राम हरे 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 कृष्णा। तो आप सब लोगों का स्वागत है, यू आर ऑल वेलकम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इस्कान और उसके संस्थापक आचार्य इस डिवाइन ग्रेस अभयचरणार भक्तिविदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की ओर से आप सब लोगों का कार्तिक मास में आज यहां कर्दम मुनि प्रभु और साध्वी माता जी के घर पे हरि कथा में हरि कीर्तन में आपका स्वागत है और धन्यवाद इस परिवार को, कर्दम जी और साध्वी को, जिन्होंने कार्तिक मास में आप सबको भगवान के बहुत निकट जाकर पुजारी की तरह दीप अर्पण करने का मौका दिया। वैसे तो भगवान की आरती तो दिन में 6-7 बार होती है और पुजारी नित्य करते रहते हैं, लेकिन जब भगवान छोटे बालक बन के आते हैं तो सबको मौका देते हैं अपनी सेवा करने का। तो आप सब लोग भाग्यशाली हो कि आपने अपने हाथों से भगवान को आरती, आरती का क्या अर्थ होता है? आरती, रति कहते हैं बहुत ज्यादा अटैचमेंट को, रति कहते हैं। रति मतलब ऐसा काम करें जिसमें आदमी को सुख मिले। आरती का मतलब भगवान के निकट जाके उसके साथ बहुत क्लोज निकट संबंध स्थापित कर लें, उसको आरती बोलते हैं। तो आप सब लोगों ने भगवान के निकट जाकर आरती का ये बड़ा उत्सव अभी किया, कैसे लगा आप सब लोगों को? हाँ, आप लोग को कैसे लगा प्रोग्राम? हाँ बच्चे लोग बोलो हरे कृष्णा। कैसे लगा आप लोगों को? तो ये मोचिदा गांव है? हाँ क्या मोचिदा? हाँ मेजीना। मोचिदा क्या है? मोचिदा पास में पता नहीं, मोचिदा तो वो है ना, कुबेरात्म जो बदमूर्त यदवत त्वा मोचिदा। मोचिदा का मतलब मुक्त किया, तो मोचिदा का मतलब जो मुक्त हो गया संसार के बंधन से। तो मोचिदा वालों के पड़ोसी सब मुक्त हो गए, अब आप जल्दी मुक्त होने की तैयारी करो। हरे कृष्णा। तो आज भगवद गीता का ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, बोलो, एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति माम एति सो अर्जुन। ये भगवद गीता के चौथे अध्याय का श्लोक है, जिसमें दिव्य ज्ञान भगवान कहते हैं कि पहले मैंने सूर्य देव को दिया, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। किसको पहले मैंने दिया? विवस्वते योगं, विवस्वान सूर्य देव का नाम है। सूर्य हम जो उगता है रोज, आप देखते हैं ना सुबह, हाँ सुबह सुबह सूर्य उगता है ना मॉरिशस में, तो ये सूर्य जो उगता है, ये सूर्य का जो दिखता है गोला, ये ऐसे समझ लीजिए कि आपका जो मैप होता है मॉरिशस का, ऊपर से जहाज से कोई देखे तो मॉरिशस में आपका, आप तो नहीं दिखाई दोगे ना, पूरा एक आइलैंड छोटा सा दिखाई देगा, चारों ओर से समुन्द्र से घिरा हुआ, ऐसे ही दिखेगा ना। तो ऐसे दूर से सूर्य ऐसे दिख रहा है एक प्लानेट, लेकिन उस प्लानेट का एक राजा है और उस राजा का नाम है विवस्वान। विवस्वान सूर्य देव का नाम है और सूर्य देव को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का योग शास्त्र। भगवत गीता क्या है? इमं विवस्वते योगम, ये योग शास्त्र है। योग का अर्थ होता है भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना, मिलाना, संबंध स्थापित करना, टू कनेक्ट वन सेल्फ विथ गॉड। योग का अर्थ है मिलाना, जोड़ना। तो ये भगवान से संबंध स्थापित करने का, भगवान के साथ रिश्ता जोड़ने का, भगवान के साथ प्रेममयी सेवा का संबंध स्थापित करने का जो ज्ञान है, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने सूर्य देव को दिया। सूर्य देव को क्यों दिया? सकल ग्रहाणाम, सूर्य सारे जो ग्रह हैं, सारे प्लैनेट है, उसका राजा है, सकल ग्रहाणाम राजा है। सूर्य सब ग्रहों का राजा है और सूर्य सबको प्रकाश देता है, सबको रोशनी देता है, अंधकार को मिटा देता है। सूर्य नहीं हो तो हम दुनिया में जी नहीं सकते, दिन नहीं उगेगी तो काम कैसे चलेगा। सूर्य सबको जगा के प्रेरणा देके काम में लगाता है और सूर्य अंधकार को मिटाता है, और ये सूर्य को ज्ञान दिया है, ये हमारे अंदर की अंधकार को मिटाएगा, अज्ञानता को मिटाएगा। और सूर्य का दूसरा क्या विशेषता है? सूर्य सदा काम में लगा रहता है, कभी सूर्य छुट्टी नहीं करता। सूर्य 365 दिन उगता है, उगता है कि नहीं उगता है? और सूर्य कभी ऐसे नहीं है कि सूर्य नहीं उगे, संभव नहीं है, मतलब काम में जो लगा रहता है, इसका मतलब सेवा का काम में कभी छुट्टी नहीं होती है। ये हमने पता नहीं कैसे संडे को छुट्टी का नेम बना रखा है। हाँ, इसको हॉलीडे नहीं बोलते हैं, हमारी भाषा में ये होलीडे है। होलीडे का मतलब भगवान के भजन करने के लिए दिन है। हमारे लिए सबसे ज्यादा काम संडे के दिन होता है। दुनिया संडे के दिन सो के उठते भी नहीं है, आज मजा लेंगे सो के। अरे सोने में कभी कोई मजा होता है? अरे सोया हुआ आदमी तो मरे के समान होता है। हा? सोया हुआ आदमी डेड बॉडी है, वो समझते हैं मजा ले रहे हैं, मर के मजा लेना है क्या? आज सो के मजा लेंगे, क्या सोने में कोई मजा है क्या भाई? सोने में तो अपने पास में अपना प्यारा बच्चा सोया हुआ है, वो गिर जाए उसका भी पता नहीं लगता है। तो आदमी सोए में तो किसी से कोई संबंध तो रहता नहीं है, किसी को देखता नहीं है, किसी को पहचानता नहीं है, किसी को सुनता नहीं है, तो सोने में कौन सा मजा है? सोना सोया हुआ आदमी मुर्दे के समान है, मरे हुए के समान है, किसी काम का नहीं। ये सूर्य न उगाए तो सब सोए रहे। तो सूर्य अज्ञानता को मिटाता है। और तीसरा सूर्य का विशेष काम यह है कि जो भी गंद कचरा कहीं होता है, जितनी भी डर्टी थिंग्स होती है, सूर्य उन सबको पवित्र कर देता है। सूर्य सबको पवित्र कर देता है। ऐसे ही भगवान का ज्ञान इसी अध्याय में आगे आएगा, पापियों में महापापी हो फिर भी इस ज्ञान की नाव पे चढ़ेगा तो संसार सागर को पार कर जाएगा। तो ये ज्ञान कोई घर छोड़ के साधु सन्यासी बने उसके लिए नहीं है। भगवत गीता भगवान ने किसी सन्यासी को नहीं दिया, किसी ब्राह्मण को भी नहीं दिया, एक क्षत्रिय को दिया, एक गृहस्थी को दिया और एक कर्मठ काम में लगे हुए व्यक्ति अर्जुन को दिया। तो ये बात बहुत बड़ी विशेषता से समझनी चाहिए कि भगवत गीता हम सब घर में रहने वालों के लिए है, ये किसी मंदिर के पुजारी के लिए नहीं है या किसी सन्यासी के लिए नहीं है। विशेष भगवान ने अर्जुन को गीता को सुनने का अधिकारी बनाया। उस वक्त सन्यासी भी बहुत होंगे, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं थे, कई ऋषि मुनि भी होंगे, लेकिन भगवान ने अर्जुन को परंपरा में, और पहले सूर्य देव को किया, और सूर्य देव के बाद मनु, और मनु से हम सबकी उत्पत्ति हुई। ये विवस्वत मनु है जो अभी इस वक्त मनु चल रहा है। आप जानते हैं मनु किसको बोलते हैं? जैसे आपकी गवर्नमेंट चल रही है ना, 5-5 साल के बाद गवर्नमेंट बदलती है ना, तो कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, कोई प्रेसिडेंट आता है, ऐसे यूनिवर्सल गवर्नमेंट जब चलती है तो उसका एक मनु उसका किंग होता है मनु। वो मनु बदलता कर कब है? ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु बदलते हैं, 14 टाइम मनु चेंज होते हैं। तो इस वक्त ब्रह्मा का एक दिन का 7वां मनु चल रहा है, 7th मनु अब चल रहा है। और ये सूर्यदेव विवस्वान का बेटा है और इसका नाम है शरदवान या विवस्वत मनु, शरदवान मनु या विवस्वत मनु। सूर्य का दूसरा बेटा शनि है और सूर्य की बेटी यमुना है। जो यमुना है कालिंदी, ये सूर्य की बेटी है। और यमराज ये भी सूर्य का बेटा है। तो सूर्य, इसका मतलब सूर्य भी गृहस्थी है। हाँ, सूर्य के बेटे हैं तो परिवार होगा तब ना। एक संज्ञा उसकी पत्नी का नाम है। हरे कृष्णा कीर्तन कर रहा है। तो भगवान ने ज्ञान दिया विवस्वान, विवस्वान ने अपने बेटे मनु को, मनु के नाम से, मनु के द्वारा ये ज्ञान मानव में आया और मनु ने फिर ये ज्ञान दिया महाराज इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु महाराज सूर्य वंश के एक महाराज हुए हैं, जिस वंश में बाद में दशरथ महाराज के घर में भगवान श्री रामचंद्र, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण का प्रकट्य हुआ। तो उससे पहले ये भगवद गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती को दिया और उससे पहले भी ये परंपरा चली थी। तो भगवान कहते हैं ये ज्ञान मैंने दिया। तो अर्जुन ने फिर भगवान ने कहा एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषियों विधु, ऐसे ये राज ऋषियों को ज्ञान दिया गया। राजाओं को नहीं, राज ऋषियों को। राज ऋषि किसको बोलते हैं? राज करते हुए भी भगवान की भक्ति में लगा हुआ। राज तो करता है लेकिन सब अपनी प्रजा को भगवान की सेवा में लगाता है, सदमार्ग के ऊपर चलाता है, उसको राज ऋषि बोलते हैं। जनक महाराज राज ऋषि थे, युधिष्ठिर महाराज राज ऋषि थे। ये ऐसे राजा थे जिनके घर में साधु साधु आते थे और इनके पास समय होता था सत्संग करने का। युधिष्ठिर महाराज के पास समय समय के ऊपर बहुत से ऋषि आके सत्संग किया करते थे। भगवान राम जब राज करते थे अगस्त आदि ऋषि आके वहां सत्संग किया करते थे और कई घंटे राज चलाने वालों के पास समय था, राजाओं के पास सत्संग करने का समय था, लेकिन हम घर चलाने वालों के लिए सत्संग में जाने का समय नहीं है। कितना कितना विडंबना है, कितना आश्चर्य है कि एक छोटा सा घर चलाते हैं, 4-5 परिवार के मुश्किल से हम रोज के 2 घंटे निकाल के भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं। 4 घंटे टीवी के ऊपर तो बैठ के टाइम खराब कर सकते हैं लेकिन 1-2 घंटा बैठ के भगवान की कथा नहीं सुन सकते। ये मूर्खता है, ये आदमी पतन के रास्ते पे जा रहा है। ये पाश्चात्य संस्कृति हमारे संस्कारों के ऊपर बड़ा आघात कर रही है और हमारा जो मानव जन्म का लक्ष्य है उसमें बहुत बड़ी रुकावट डाल रही है। इंसान बन के इस दुनिया में आए और भगवान को न जाने और वापस चला जाए, उसको कृपण बोलते हैं। कृपण कहते हैं कंजूस को। कंजूस का मतलब है धन हो लेकिन सुख से कुछ खाए पिए नहीं, उसको कंजूस बोलते हैं। कंजूस समझ, यहां क्या बोलते हैं कंजूस को आपकी भाषा में? हाँ, क्या गया? क्ले गया? क्ले गया? स्पेल बोलो, स्पेलिंग। हाँ, सीओई क्लेविया नहीं बनेगा। कंजूस, एक आदमी, वो तब जमाने में लाइट नहीं थी, तो सुबह 4 बजे उठ के खेत पे गया तो घर में दिया जलता छोड़ के चला गया। 2-4 किलोमीटर रास्ते में गया, याद आया दिया जलता चल के छोड़ के आया हूं, इसका मतलब तेल जलेगा, नुकसान होगा। 2 किलोमीटर से वापस आया, दरवाजा खड़खड़ाया, घरवाली ने दरवाजा खोला, बोला दिया जलता छोड़ के आऊं उसको बुझा देना। उसने बोला वो तो मैंने बुझा दिया, तुम बचत करना चाहते थे, तुम जूती पहन के आया होगा, घिसेगी नहीं इतनी आए गए। उसने बोला मैं पागल थोड़ी हूं, वापस आते हुए जूती बगल में दबा के आया हूं, जूती थोड़ी घिसानी है ऐसे, पागल है। ये कंजूस का मतलब है जब जूती है तो पहनने के लिए नहीं, बोला वो भी झोले में डाल के लाया हूं, जेब में दोनों जूती डाल के लाया हूं, इसको कंजूस बोलते हैं। तो कंजूस कौन है? कंजूस वो है जो इंसान का जन्म मिले, मानव का जन्म मिले और भगवान को न पाए और इस दुनिया से वापस चला जाए, उसको कंजूस बोलते हैं। ये नर देह में नारायण को प्राप्त किया जा सकता है, इसमें भगवान श्री कृष्ण का भजन किया जा सकता है, इसमें राम की भक्ति की जा सकती है। ये मानव जन्म ऐसे बेकार हमारा चला जाए किसमें, खाने पीने में? अरे ये तो ऋषभदेव कहता है अपने 100 पुत्रों को, जिसमें भरत महाराज के नाम से इस देश का मतलब ये देश भी भारतवर्ष का पूरा, ये जितनी दुनिया दिख रही है सब भारतवर्ष कहलाता था। बेटा ये खाना पीना, ये एक परिवार, ये सब कुछ तो सब जूनियों में सबको मिलता है। जो कुत्ता पैदा होता है उसका भी एक माता पिता होता है, उसका भी भोग भजन होता है। क्यों? और यहां तक कि एक बार इंद्र को सुअर बनना पड़ा, और सुअर इंद्र बना किसी सांप के कारण, इंद्र बना क्या, पिग। अब पिग बना, उसकी एक पत्नी पिगनी उसको मिल गई, और फिर बच्चे पिघले पिघले छोटे से, और रहता था एक बहुत बड़े गटर में, और जिस गटर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी होटल का सारा सीवेज जहां आता था वहां रहता था। ब्रह्मा ने कहा बहुत दिन हुए इंद्र गया, अभी वापस नहीं लौटा है। ब्रह्मा जी आए इंद्र को, जो पिग के फार्म था, हिलाया, ए इंद्र चलो तुम स्वर्ग के राजा हो। बोला नहीं नहीं, मेरा ये स्वर्ग है, मैं यहां रहूंगा, मुझे अच्छा लगता है, देखो मेरी पत्नी कैसे मेरे लिए प्रेम से वहां से शिविर से माल लेके आ रही है, मैं मेरे बच्चों को नहीं छोड़ सकता हूं। ब्रह्मा जी ने बोला कमाल है, इंद्र स्वर्ग को छोड़ के सुअर बना है तब भी बड़ा खुश है। इस दुनिया में आदमी जिस भी जोड़ी में भोग में इतना लिप्त हो जाता है कि भगवान याद नहीं आता। ब्रह्मा जी ने उसको फिर जबरदस्ती पकड़ के ले जाके भगवान को वापस इंद्र को अपनी जगह पे ले गया। तो इस दुनिया में हम जब फंस जाते हैं तो किस में फंस जाते हैं, ये बंधनों में ही तो फंसते हैं ना। दुनिया में हमारा फंसने का कारण क्या है, बंधन, रिश्ते नाते। अब भगवान ने देखा कि ये लोग बंधन में बेचारे फंस जाते हैं तो क्या करना चाहिए। बोला फिर मैं छोटा बन के जाता हूं, मैं जाता हूं और लोगों को कहता हूं आप मुझसे संबंध कर लो, आप मुझसे संबंध करोगे तो आपके बंधन खुल जाएंगे, आप दुनिया से संबंध करोगे तो बंध जाओगे, और अगर मुझसे संबंध करोगे तो खुल जाओगे, तुम्हारे बंधन बिल्कुल खुल जाएंगे। इसलिए इस लीला में भगवान ने अपने आप को बांधा है। जो दामोदर लीला आप देख रहे हैं आज, जो अभी सुन रहे थे, इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, या तो बच्चा है नींद आ रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे मैंने विवस्वान को दिया, ज्ञान दिया था, फिर परंपरा में ये ज्ञान आया। और सकाले नेह महता योगो नष्ट परम तप, हे शत्रुओं को, हे शत्रु को, हे दुश्मन को, परम तप का मतलब जो अपना शत्रु हो उसको अच्छी तरह से दबाए। हा? अर्जुन, समय के प्रभाव से, काल के प्रभाव से, टाइम के, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द टाइम, ये ज्ञान लुप्त हो गया, ज्ञान गुम हो गया, ज्ञान डिसअपियर्ड। अरे अर्जुन ने बोला अभी आपने कहा था कि अब यह ज्ञान है, अविनाशी है, इज इनडिस्ट्रक्टेबल है, फिर ये डिस्ट्रक्ट कैसे हो गया? तब भगवान कहते हैं व्हाट इट मीन्स इज, इसको जानने वाले राज ऋषि नहीं रहे। अब तो राजा कैसे रहे हैं, पहले जो राज ऋषि हुआ करते थे ना, वो जब पब्लिक में आते थे ना तो पब्लिक फूल बरसाया करती थी, और रास्ते के ऊपर प्रेम से घर सजा के रखती थी, घरों के आगे पानी के मटके भर के रखते थे, दूध दही रखते थे, तोरण द्वार बनाते थे, केले के पत्ते लगाते थे, महाराज जाएगा, और बच्चे बड़े सब फूल बरसाया करते थे। ये राज ऋषियों का स्वागत हुआ करता था। आजकल के राजा बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाती है और लोग गोलियां बरसाते हैं। बहुत से राजाओं को ये उसको राज ऋषि के ऊपर फूल बरसते थे और ये आजकल के जो ये वोटों से चुन के आते हैं राजा, इनके ऊपर लोग गोलियां बरसाते हैं और इनकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है। ये राजऋषि नहीं है इसलिए ये ज्ञान गुम हो गया। ये राजाओं को ज्ञान मिलता मिला करता था। अब राजा किसी को भगवद गीता नहीं आती है, पूरे भारत के नहीं पूरी दुनिया के राजाओं से पूछो कि तुमने भगवद गीता पढ़ी। अरे राजऋषियों के लिए यह शिक्षा थी, जब से राजाओं ने यह शिक्षा छोड़ दी तब से प्रजा पथ भ्रष्ट हो गई, रास्ता उनका बिगड़ गया, सभी पशु जैसा जीवन जी रहे हैं, जस्ट लाइक एनिमल्स। क्या एनिमल क्या करता है? खाना पीना सोना मौज करना, और क्या। हम भी तो वही कुछ कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। सुबह से शाम तक पैसा कमाने की परेशानी में लगे होते हैं और पैसा लाके खा के मौज करके और बस खाया पिया मौज किया सोया, यही कुछ कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। आहार निद्रा भय में तोन्य पशु भी समाना हो। अरे ये चार चीजें तो पशु में भी वही है। नहीं नहीं हमारे पास गाड़ी है। अरे हाँ पशु भी चार पहिए के ऊपर चलता है, तो वो भी चार पांव पे चलता है, तू भी चार पहिए पे चलता है, कौन सी तुम्हारी विशेषता है। अरे हमारे इंसान से तो हिरण की आंख अच्छी है अगर सुंदरता के ऊपर आओ तो। हम मृग नैनी बोलते हैं, जिसकी अच्छी आंख होती है उसको बोलते हैं मृग नैनी, इसकी आंख मृग जैसी है। कोई आदमी बहादुर होता है ये शेर पुरुष है, इसका मतलब शेर आदमी से ज्यादा बहादुर है, तब लोग को कहते ना ये शेर है। हाँ ये हमारा शेर आ रहा है, ये हमारा बहुत बड़ा बलवान पुरुष शेर पुरुष है। कोई बहुत चालाक होता है बोला ये लूमड़ी जैसा चालाक है, तो इसका मतलब लूमड़ी इंसान से चालाक है। तुम्हारी कौन सी विशेषता है? हर एक पशु तो हमसे एक एक चीज में अच्छा है। अरे गाय का गोबर तो कम से कम किसी पोछे को देने के काम के आता है। हमारे गाय का क्या, और घोड़े का गधे का भी पुराने जमाने में दीवार के ऊपर करते थे, और इंसान का किसी काम का नहीं है। अर्जुन को एक बार भगवान श्री कृष्ण का सबसे खराब चीज दुनिया में ढूंढ के आओ। अर्जुन जगह जगह जाके देखा, ढूंढी कोई खराब चीज किसको, एक जगह से गया तो उस जमाने में बाथरूम जो हुआ करते थे टॉयलेट, वो स्वीपर लोग उठा के डब्बे में कहीं फेंकते थे, तो एक जगह से बहुत बड़ा विस्टा स्टूल का पाइल पड़ा था। अर्जुन नाक बंद करके सांस दम घुटने लगा। अर्जुन बोला इससे ज्यादा तो कुछ बुरा होता नहीं है, तो स्टूल से आवाज आया कि हम बुरे नहीं, तेरा ये शरीर की मशीन खराब है। कल हलवा पूरी हम थे, कल हम काजू थे, बर्फी थे, और कल हम बहुत अच्छी बिरयानी थे, तेरे अंदर गया हमारा ये हाल हो गया। तो बुरा खराब ये मशीन है हमारी, ये जो मशीन है ऐसी खराब है, काजू को और पिस्ता को और बादाम को दूसरे दिन के किसी काम का नहीं कर देते, तो अच्छाई क्या है हमारे में। अच्छाई ये है कि भगवान ने दिमाग दिया है। किसी बिल्ली को कुत्ते को अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते नहीं देखोगे, जाता है क्या कोई? नहीं ले जा सकती है। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं ना, पशु नहीं पढ़ सकते हैं ना, फिर भी उनको रोटी मिलती है कि नहीं मिलती है? फिर भी भगवान ने रोटी का उनका बंदोबस्त करके रखा है। लेकिन हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को, उसको शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन हम शिक्षा इसलिए नहीं देंगे तुम रोटी कमाओ। ये अंग्रेज ने ऐसी हमारे दिमाग में उल्टी बात डाल दी है, पढ़ो इसलिए आगे नौकरी करनी है, इससे पेट गुजर करना नहीं। अरे नौकरी तो गधा कुत्ते को भी रोटी तो दो टाइम मिल रही है, मिल रही है कि नहीं मिल रही? पशु मर रहे हैं क्या भूखे? कोई अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है कुत्तों में? हाँ डाग यूनियन है, डाग यूनियन है अनएम्प्लॉयमेंट की। किसी डाग को किसी खास स्ट्रीट में किसी ने अपॉइंट किया है क्या? वहां से गुजरोगे तो भाव भाव करेगा, बोलेगा ये मेरा है, किसी ने दिया है उसको? हाँ डाग को कोई गांव का इंचार्ज बनाया, किसी ने पैंच है क्या? वो प्रधान है गांव का, गांव में कोई आएगा भाव भाव करेगा। ये जैसे डाग की तरह हम भी बोलते हैं ये मेरा है मत ले जाना, ये इधर से हो जाएगा, किसने हमको इंचार्ज बनाया यहाँ का? तो हमारे में बुद्धि भगवान ने ज्यादा दी है, किस चीज के लिए? भगवान को समझने के लिए। उस काम में ये बुद्धि नहीं जाए और केवल खाने पीने में बुद्धि चली जाए तो हमारा पशु जैसा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, और बार बार ये मानव का जन्म मिलना इतना आसान नहीं है। और मानव का जन्म भी भारत संस्कृति में मिलना बहुत बड़ा दुर्लभ है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म या जन्म सार्थक करी कर परोपकार। परोपकार का मतलब, पर मतलब दूसरा, उप मतलब उठाओ, कर मतलब हाथ दे, दूसरे ग्रह हो हुए को हाथ से पकड़ के उठाओ। ये भारत की संस्कृति में जिसका जन्म हुआ है उसके ऊपर ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का कहते हैं ऋण है आपके ऊपर। आपको दुनिया सारी का मार्गदर्शन करना है, पूरी दुनिया में गिरे हुए लोगों को उठाना है। तो भगवान श्री कृष्ण जब ये बात कह रहे हैं तो अर्जुन कहते हैं आप तो मेरी उम्र के हो, सूर्य देव इतना पुराना है, आपने उसको ज्ञान कैसे दिया, ये बात मैं कैसे मान लूं। तब भगवान ने कहा अर्जुन तुम और मैं कई बार इस दुनिया में आए हैं, बहुनि में जन्मानी तव चार्जुन तानी अहम वेद सर्वाणी न तुम वेद तत्परं तप। अर्जुन तुम्हारे को याद नहीं है मेरे को सब, मैं जब जब इस दुनिया में आया हूं तुम भी मेरे साथ आए हो लेकिन तुमको सब भूल गया और मुझे सब याद है। ये अंतर है जीव में और भगवान में। हम में और भगवान में डिफरेंस क्या है, भगवान को पहले क्या हुआ था, अब क्या होगा और आगे भविष्य में क्या होगा ये सब पता है। ही नोज प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। और हमको ये भी पता नहीं है कि 2009 में आज के दिन हम कहां थे और क्या कर रहे थे। वो तो छोड़ो, 6 दिन पहले आपने दोपहर को 3 बजे क्या खाया था आपको याद है, क्या खाया था कुछ बोला किसी ने, भूल गए। भूलना क्यों भूलते हैं, व्हाई वी फॉरगेट, बिकॉज वी चेंज बॉडी। फॉरगेटफुलनेस इज कास्ट बाय चेंज ऑफ बॉडी। शरीर के परिवर्तन के कारण हमको सब कुछ भूल जाता है और हमारा शरीर रोज परिवर्तन होता रहता है, शरीर में रोज बदलिया तो बदलते रहता है। अब जो 20 साल पहले थे वैसे तो अभी आप नहीं दिख रहे हो ना। लोग कोई बेचारी बूढ़ी मैया होती है, गाले अंदर चले जाते हैं, आंख अंदर चले जाती है, लाठी लेके चलती है तो लड़कियां हंसती है, देखो बुढ़िया कुबड़ी जा रही है, ऐसे हंसते हैं ना, हंसती है। तो बुढ़िया जा रही थी ऐसे लकड़ी लेके, तो हंसती हुई लड़कियां कहती है क्या ढूंढ रही हो मैया, क्या ढूंढ रही हो, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर। उसने कहा बेटी इन गलियों में मेरी जवानी गुम हो गई है, उसको मैं ढूंढ रही हूं। मैं भी तुम्हारी तरह जवान थी, यही मेरी जवानी गुम हो गई है, उसको मैं ढूंढ रही हूं। इसका अर्थ क्या है कि आज मुझे बुढ़िया कह रहे हो, कल तुम भी बुढ़िया हो जाओगी और तुम्हें भी कोई कहेगा क्या ढूंढ रही हो। ये सदा हमारा एक जैसा सूरत नहीं रहता, लेकिन भगवान सदा के लिए एक जैसा रहता है। भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। नव यौवनम च, श्री कृष्ण हमेशा 15 साल और कुछ महीने से ऊपर नहीं जाते। तो भगवान ने कहा बहुनी में जन्मानी, अर्जुन बोला आपका जन्म होता है, अरे जन्म लेना तो बहुत कष्ट है, जन्म लेना इतना आसान नहीं है, जन्म लेना बहुत मुश्किल है। जन्म लेने का मतलब 9 महीने गर्भ के अंदर पड़ा रहना और प्लास्टिक की बैग में बांध के किसी को रख के आधा घंटा भी आदमी नहीं रह सकता है, कैसा ऐसे कहां है, पेट के अंदर है, कहां मलमूत्र चारों ओर भरा हुआ है, वहां कोई गर्भ अच्छी जगह है। तब अर्जुन ने कहा आपका जन्म, बोला मैं अजन्मा अजो प्रसन्न वे आत्मा, मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता, मैं तो मेरी दिव्य योग माया से जब चाहूं तब प्रकट होता हूं। तो कब प्रकट होते हो, तो भगवान ने कहा जब धर्म की हानि होता है, अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं धर्म को स्थापन करने के लिए प्रकट होता हूं। यदा यदा ही धर्म से ग्ला निर्भवती अभ्योत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजन। अर्जुन ने कहा धर्म की स्थापना करने के लिए आपको आने की क्या जरूरत है, किसी को भेज दो, अपने बेटे को भेज दो, जैसे जीसस क्राइस्ट को भेज दिया भगवान ने, सन ऑफ गॉड आया तो पूरा एक धर्म चालू हो गया। अपने किसी मैसेंजर को भेज दो, जैसे हजरत मोहम्मद मैसेंजर बन के भगवान का आया और एक बहुत बड़ा धर्म स्थापित कर लिया, तो आपको आने की क्या जरूरत है। तब भगवान ने कहा परित्राण आय साधु, मैं अपने साधुओं को, साधु जब मुझे याद करते हैं मेरे भक्त, तो मैं उनको ना नहीं कर सकता, उनको प्रसन्न करने के लिए मैं आता हूं। तो भगवान कब आते, इसलिए लोग कभी कहते हैं कि सब भगवान के अवतार हिंदुस्तान में क्यों होते हैं, अफ्रीका में क्यों नहीं, अरे अफ्रीका में कोई भक्ति नहीं है तो भगवान जाके करेगा क्या, हाँ भूतों के बीच में क्या करेगा भगवान जाके, उधर कोई वो ऐसा ही भूत भेजेगा जो उनका इलाज ठीक करे। भगवान तो वहां आते हैं जहां कोई भक्त होता है,
भाई जहां बुलाएगा वहां आदमी आएगा ना। जब आपको आपको भी कोई बुलाता है, यहां बुलाया था कर्दम मुनि तब आप यहां आए हो ना। तो दुनिया में कभी कोई किसी को बुलाएगा तब आएगा। तो भक्त भगवान को बुलाता है तब भगवान आते। कभी हमने आपको बताया एक बार अकबर, अकबर एक बहुत बड़े राजा हुए, सुना है नाम उसका, शहनशाह अकबर, द ग्रेट अकबर द ग्रेट। उसका एक मिनिस्टर था, उसका नाम था बीरबल, बहुत बड़ा बुद्धिमान था। लेकिन एक दिन बीरबल ने कहा कि राम नामी है, मार्च अप्रैल में छुट्टी चाहिए, महीना घर जाऊंगा। वापस आया फिर बोला आप जन्माष्टमी आ रही है छुट्टी दो। फिर टाइम गुजरा नहीं तो बोला अब हमारा नरसिंह चतुर्दशी आ रही है छुट्टी दे दो। अकबर ने बोला तुम्हारे भगवान को कोई काम नहीं है, इतने भरे हर जगह तो महीने महीने में तुम्हारे अवतार होते रहते हैं और तुम हर बार छुट्टी लोगे तो काम कैसे चलेगा। भगवान के पास कोई मैसेंजर नहीं है भेज के काम चला ले, कोई बेटे को भेज दे, अब खुद क्यों आता है। बीरबल ने कहा आप तो मेरे को छुट्टी दीजिए, मैं फिर आके बताऊंगा। बीरबल छुट्टी पे गया तो उसने अकबर का छोटा बच्चा था उसका एक मूर्ति बनाया, किसका, वेक्स का, बहुत सुंदर वेक्स का मूर्ति बनाया उसका, उस जैसा वैसा कपड़े भी उसके वैसे ही घर के पहना के। और जब वापस आया मूर्ति को छुपा के लाया, जो अकबर के छोटे बेटे को उसकी आया थी जो मेड थी जो उसको देखभाल करती थी उसको 500 रुपये दिए। बोला एक दिन तुम इस गुड़िया को, मोम की गुड़िया को, इस वैक्स के अकबर के बेटे की मूर्ति को सुंदर कपड़े पहनाकर और दरबार में लाना, जब महाराज अपने सिंहासन पे बैठे हो, उसके सेनापति कमांडर उसके मंत्री मिनिस्टर सब बैठे हो नवरत्न, तब तुम बच्चे को गोद में लाना और जो फाउंटेन है बीच में पानी का वहां खड़ी होना, जब अकबर अपने बेटे की ओर नजर उठा के देखे उस वक्त तुम बच्चे को पानी में गिरा देना, तुम्हारा काम खत्म। एक दिन ऐसा सभा लगा, अकबर बैठा है, उसके मानसिंह महाराज उसका कमांडर बैठा है, नौ रतन बैठे हैं, सभा लगी हुई है। वो बच्चे को, मोम की मूर्ति को, बच्चे को मेड लेके आई, अकबर ने देखा, अकबर बच्चे को देख के मुस्कुराया, मेड ने बच्चे को पानी में गिराया, अकबर सिंहासन से उठा, वहां से भाग के पानी में कूदा। पानी कपड़े के साथ अकबर राजाई वेश में था, मुकुट पहना हुआ पानी में गया। बच्चे को क्या उठाता है, बच्चा तो मोम का था। बीरबल ये क्या, तो महाराज सेनापति को कहा होता, मंत्री को कहा होता, इतना छोटा बच्चा था कोई भी निकाल सकता था, आप क्यों उठे यहां से, भाग के क्यों उसको निकालने गए। बोला मेरा बेटा, मेरी दिल का टुकड़ा था, उसको देखा तो मेरे को कोई नहीं दिखाई दिया, मैं ही उसको निकालने गया। बोला आपने कहा था ना कि हमारा भगवान बार बार क्यों आता है, अरे वो हमारे भक्त जब बुलाते हैं तो भगवान को न बेटा दिखता है न उसको कोई मैसेंजर दिखता है, और स्वयं भागा हुआ इस दुनिया में चला आता, क्योंकि उसके भक्त उसको प्रेम से बुलाते हैं इसलिए उसको कोई दिखाई नहीं देता है। परित्राणा है साधु नाम, साधु बनोगे तो भगवान रक्षा के लिए आएंगे। नमे भक्त प्रणश्यति कौन्ते प्रतिजानहि, अर्जुन जाके दुनिया को वायदा करो, दुनिया को जाके ये वचन दे दो, दुनिया के सामने ये प्रतिज्ञा करो कि श्री कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता क्योंकि मैं उसकी रक्षा करने के लिए आता हूं। जैसे आंखों को ये आईलिड हर वक्त प्रोटेक्ट करती है, जैसी मां बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते। तो भगवान का भक्त बनना भगवत गीता का संदेश है, भाव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। और भक्त ही भगवान को जान सकते हैं। अर्जुन को कहते भक्तोसी मे सखा चेती रहस्यम है तद उत्तमम। अर्जुन परंपरा समाप्त हो गई लेकिन आज ये परंपरा मैं तेरे को दे रहा हूं, आज तुम इस भगवत गीता की शिक्षा की परंपरा का नया राज ऋषि बनो। अर्जुन ने बोला मुझे क्यों दे रहे। तब भगवान ने कहा क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, भक्तोसी मे सखा चेती, क्यों मैं तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, इसलिए भगवत गीता को समझने के लिए, दिव्य ज्ञान को समझने के अधिकारी हो। इसका अर्थ है भगवत गीता कौन समझ सकता है, जो भगवान का भक्त बनेगा। फिर भी अर्जुन कहता है साधु आपके कभी कभार बुलाते हैं तब आप आते हो, लेकिन आपके आने का कोई विशेष कारण होना चाहिए। तब भगवान ने कहा, प्रभुपाद ने एक बार पूछा था भगवत गीता का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्स कौन सी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्स ऑफ भगवद गीता की कौन सी है। तो उस वक्त कुछ लोगों ने सर्वधर्मान परित्यजा, कुछ लोगों ने कुछ और कहा, लेकिन उस दिन प्रभुपाद ने कहा सबसे इम्पॉर्टेंट वर्स भगवद गीता की है, जन्म कर्म च मे देव्यम। और ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, मैं साधु की रक्षा करने के लिए आता हूं, और फिर कहते हैं जब मैं आता हूं तो मैं ऐसे दिव्य लीलाएं, ऐसे प्रेम की लीलाएं अपने भक्तों के साथ करता हूं कि मेरे जाने के बाद जन्म जन्मांतर तक हजारों हजारों सालों तक लोग उन लीलाओं का स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, और उससे वो मेरे पास वापस अर्जुन आ जाते हैं। तो इसलिए ये दामोदर महीने में जो ये विशेष भगवान को गोवर्धन धारण करने की लीला की भगवान ने, और भगवान को माँ यशोदा ने प्रेम से बांध दिया, ये लीलाएं 5000 साल पहले हुई है, 5200 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आज भी हम भारत से बहुत दूर गोकुल में भगवान को मामा ने बांधा था, गोकुल में कहां रहा गोकुल और कहां मॉरिशस, आज मॉरिशस में नहीं तो रोज के 2000 से 3000 लोग भक्त जाके घरों घरों में ये दामोदर की पूजा कर रहे हैं, 2-4-5 हजार लोग रोज दामोदर का अष्टक गा रहे हैं, दीपदान हो रहा है। ये तो भगवान की लीलाएं भगवान करके गए, तब हमको ये मौका मिल रहा है ना। ऐसे भगवान आया और असुर को मारा और वापस चला गया तो हमको क्या पता लगेगा, ये भगवान ने दिव्य लीलाएं की है, और इन लीलाओं का श्रवण करने से भगवान कहते हैं केवल इन मेरे लीलाओं को श्रवण करके कोई ठीक तरह जान ले तो जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा अर्जुन, वो वापस मेरे पास आएगा, इस दुनिया के बंधन में कभी नहीं पड़ेगा। तो ये भगवान की दिव्य लीला है, ये भगवान की करुणा और कृपा है, ताकि हम भगवान की तरफ आकर्षित हो जाएं, अटैच हो जाएं, अट्रैक्टेड हम भगवान के, अब दुनिया की तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान की तरफ हमारा मन जाएगा, और जैसे भगवान की तरफ मन जाएगा तो हमारा मन हमको दुख देना बंद कर देगा, हमारे दुख का कारण हमारा मन है। और सारी भगवद गीता में भगवान ने मन को मांगा है, कहा है मैं अर्पित मनोबुद्धिर, अर्जुन तेरा मन मुझे अर्पण करो। मन भगवान में कैसे लगाएं, मन ऐसी चीज तो है नहीं कि जेब से निकाल के भगवान के पास रख के आ जाएं, तो मन भगवान में कैसे लगाएंगे, मन का जो काम है वो भगवान में लगाना है। मन का काम क्या है, सोच विचार करना, तो सोच विचार किसके बारे में करना चाहिए, भगवान के बारे में, कुछ भी चिंतन करना है, क्या मन क्या करता है, क्या कहाँ जाना है, आज कहाँ जाना है, उसको कहना मंदिर जाना है, सत्संग में जाना है, ये मन हो गया भगवान की तरफ लग गया। जब दूसरा मन का काम है विकल्प, नहीं तो विकल्प क्या करना है, बोला आज आज टीवी के ऊपर नहीं बैठना है, टाइम खराब नहीं करना है, आज मैं बैठ के भगवद गीता पढ़ता हूं, ये दूसरा मन भगवान में लगाने का साधन हो गया। नहीं करना है वो भी भगवान के लिए, और करना है वो भी भगवान के लिए, तो जो मन का काम है वो भगवान में लगाना है, भगवान के लिए चिंतन लगाने का लगा रहना है मन में। गोपियां क्या करती थी, बैठी तो घर में रहती थी लेकिन सोचती थी कि अभी कृष्ण वन में गया है, इस वक्त गायों के पीछे जाता होगा, अब कहीं उसको कांटा ना लग जाए, चिंता किसकी होती थी, कृष्ण की। मन उसका कृष्ण के अंदर इतना लगा हुआ होता था, जब उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने संदेश देकर मथुरा से भेजा था वृंदावन में, तो एक बार उद्धव जाकर गोपियों को देख रहा है, गोपी सुबह पानी भरने जा रही थी, एक हाथ में मटका पानी का था, हाथ में रस्सी थी, और दूसरे हाथ में बच्चे को लेकर उठा के जा रही थी। जब कुएं के ऊपर पहुंची तो रस्सी मटके में बांधकर कुएं में डालना चाहिए था, गोपी ऐसे देख रही थी ऊपर पेड़ के ऊपर, और रस्सी बच्चे के गले में बांध दी और बच्चे को कुएं में डाल रही है। उद्धव ने पकड़ लिया, हे गोपी बांवरी क्या कर रही है, ये मटका नहीं है बच्चे के गले में। बोला वो देखो कदम के ऊपर कृष्ण बांसुरी बजा रहा है, कृष्ण की बांसुरी बज रही है। अब उसको ध्यान कृष्ण के अंदर इतना है कि बच्चा है कि मटका है इसका भी उसको पता नहीं लग रहा है। उद्धव ने बोला धन्य है गोपियां, तुम्हारा मन हर समय भगवान के चिंतन में लगा रहता है, इसलिए भगवान का चिंतन करने वाले में सर्वश्रेष्ठ वृंदावन की गोपियां हैं, जिन्होंने एक क्षण भी कृष्ण को नहीं भूला, जुदाई के अंदर भी हर समय कृष्ण का स्मरण रहा। तो हम भी तो भगवान से जुदाई हैं, भगवान कहाँ है, अपने नाम के रूप में आया है, उसको याद करो और मन में रोज इच्छा करो कब मिलेंगे भगवान। कब मिलेंगे। युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्राय विश्रम शून्यायतम जगत सर्वन गोविंद ग्रहण में, गोविंद तेरी जुदाई में ये सारा जगत मुझे बेकार लग रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। हमको कहते कहते गोविंद तुम मंदिर में दरवाजा बंद करो ताकि हम जगत में जाएं, हमारे को जगत बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर बंद हो तो हमारा दिल खुश होता है, मंदिर खुला है तो मंदिर में बैठना पड़ेगा, ये उल्टी जी की गंगा है। गोविंद तेरी जुदाई में हमारा एक क्षण भी बीतता है तो लगता है युग बीत गया। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, वो दिन कब आएगा जब मुख से हरे कृष्ण बोले, आंखों से आंसू धाराएं बहेंगी, गला रुद जाएगा, शरीर में रोमांच होगा। वो दिन कब आएगा जब भगवान के नाम लेते हुए भगवान का नाम हमारी जीभा पे ऊपर नाचेगा, आंखों से भगवान का दर्शन होगा और हृदय गदगद हो जाएगा। तब हम समझेंगे हमारी भक्ति भगवान की सेवा में स्वीकृत है अथवा भगवान ने उस भक्ति को स्वीकार किया है। तो कैसे भी आप सब लोगों को हमारा ये प्रार्थना है कि मानव जन्म के लक्ष्य को इस महीने में समझ लो। दो दिन बाकी केवल बचे हैं, आप जहां भी अपने घर में हो भगवान को दीप अर्पण कर लिया करो, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर लिया करो। बहुत आसान मंत्र है, वेदों का सार है, ब्रह्मा जी के द्वारा सारे संसार के उद्धार के लिए नारद ने इस मंत्र को सबको दिया है। बच्चा स्त्री पुरुष किसी भी अवस्था में पवित्र अपवित्र कैसे भी रात हो दिन हो कभी भी जप सकते हैं, और कोई मंत्र कभी हर समय नहीं जप सकते हैं। इसलिए आप इस मंत्र को अपने जीवन में श्री कृष्ण के रूप में ले जाकर अपने जन्म को सफल करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कोई पूछना चाहता है, कोई किसी का जिज्ञासा हो प्रश्न हो? हाँ जी क्या सूर्य पुत्र शनि कहते हैं उसको, सूर्य पुत्र है। हाँ
बहुत लोग शनि पूजा करते हैं,
शनि भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। और शनि शनि नौ ग्रहों में एक ग्रह आता है, वैसे भगवान का भक्त है। मेरे को तो एक अच्छी बात सिर्फ ये याद आती है, एक बार भगवान विष्णु के सामने शनि भी गया और लक्ष्मी गई और भगवान को कहा आप में से हम में से कौन अच्छा लगता है। भगवान के लिए तो शनि भी अपना है लक्ष्मी भी अपनी है, तो क्या उत्तर दें? तो भगवान ने कहा देखिए लक्ष्मी तुम जब आती हो तब अच्छी लगती हो, शनि तुम जब जाते हो तब अच्छे लगती। लक्ष्मी आती हुई अच्छी लगती है और शनि जाता हुआ अच्छा लगता है, शनि जाएगा तब अच्छा लगेगा, लक्ष्मी आएगी तब अच्छी लगेगी। तो शनि नौ ग्रहों में एक ग्रह है, कोई किसी के ऊपर अगर ग्रह का प्रभाव शनि का है और उसको संतुष्टि के लिए कुछ करता है तो ये वैदिक सिस्टम में ठीक है, लेकिन भक्त के लिए भगवान, इसलिए शनि अष्टोत्तर में बलराम जी को प्रार्थना करने से शनि शांत हो जाता है। ऐसा एक अष्टोत्तर पूरा बलराम जी का शनि की शांति के लिए, एक महाराज दशरथ के द्वारा कहा हुआ अष्टोत्तर शनि की शांति के लिए। तो ऐसे वेदों में है, उसका प्रमाण है, कोई ऐसा नहीं है कि ये आउट ऑफ वे पूजा है। लेकिन आउट ऑफ ए कुछ लोगों ने और भूत देवता बनाए वो आउट ऑफ वे, लेकिन शनि तो नौ ग्रहों में एक ग्रह है, सूर्य पुत्र है और बहुत बड़ा शक्तिशाली, भगवान का बहुत बड़ा परम भक्त है शनि। भक्तों में मान भक्त है, यमराज का भाई है, यमी जमुना का भाई है, तो भगवान का साला ही तो हुआ जमुना का भाई है। तो जमुना कालिंदी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, आठ में से चौथी पटरानी है। बहुत उसके सद्भाव से देखना चाहिए, देवताओं के लिस्ट में आता है, क्रूर देवता है। एक क्रूर होते हैं, एक सौम्य देवता होते हैं, तो उनका काम क्रूर है लेकिन सेवा है। हरे कृष्ण
आपने कहा था गर्भदक्षाए विष्णु से उसके नाभि से ब्रह्मा जी की, तो यहाँ पर एक प्रश्न होता है सभी के लिए है जो शिव जी की उत्पत्ति के बारे में
ब्रह्मा जी के मस्तक से रुद्र ऐसे गिरा, जो रुद्र एक और फिर 11 रुद्र, एक नहीं 11 हो गए, 11 रुद्रानियां हो गई, तो रुद्र का जो अंश है वो तो ब्रह्मा जी के मस्तक से निकला है। 4 बेटे ब्रह्मा जी ने पैदा किए, उनको कहा कि तुम संसार बढ़ाओ, बढ़ाने को तैयार नहीं हुए, ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उसके मस्तक के अंदर से ब्लू कलर का एक बच्चा नीचे गिरा और रोने लगा और कहा मेरे को जगा दो, मैं कहां रहूं, भागवत में लिखा है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं तुम रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है और फिर तुम्हारे को 11 रुद्रानियां मिलेंगी, ऐसे तुम जाके इस संसार के अंदर तुम अब जाओ सृष्टि करो। और फिर रुद्र ने सृष्टि कौन सी की, भूतों की, ऐसे भूत बनाए और वो भूत जाके ब्रह्मा जी को खाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा ये तेरी सृष्टि बंद करो, इसकी जरूरत नहीं है, अब तुम इंतजार करो जब प्रलय होगी तब तुम्हारी सेवा ली जाएगी। तो ऐसे ये उत्पत्ति जो रुद्र के रूप की है ये ब्रह्मा जी के मस्तक से भागवत में है। लेकिन सदाशिव जो है, जो इस भौतिक जगत में शिव का वो रूप है जो प्रलय के काल में काम करता है, वो तो रुद्र रूप से करते हैं, लेकिन सदाशिव के रूप से भगवान विष्णु कभी भी भौतिक चीजों के को टच नहीं करते। इसलिए जब भौतिक जगत में टच करना होता है तब सदाशिव, जो सदाशिव विष्णु का एस्पेक्ट है वो टच करता है, उससे फिर ये सारी सृष्टि होती है। और उस सदाशिव का लोक जो है वो आध्यात्मिक जगत में है, भौतिक जगत में नहीं है। शंकर जी आम देवता नहीं है वैसे, जो शिव शंकर है वो उसके एक और विस्तार उनका, जैसे काल भैरव आदि है जिनको लोग पूजा तांत्रिक आदि करते हैं वो देवताओं की श्रेणी में आते हैं। जो आदिदेव शंकर जी आदिदेव के रूप में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश गुण अवतार है भगवान के, ये तो विष्णु से प्रकट हुए हैं, लेकिन ब्रह्मा फिर भी जीव है, लेकिन शंकर जीव कैटेगरी में नहीं आता है, शंकर जीव कैटेगरी में नहीं आता है। ब्रह्मा संहिता के अनुसार भगवान शंकर भगवान विष्णु का ऐसा परिवर्तन है जैसे दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है लेकिन दूध के काम नहीं आता है, ऐसे शंकर जी परिवर्तन है, विकार, विकार का मतलब परिवर्तन है विष्णु का भौतिक जगत के उत्पत्ति के लिए। और भागवत में तो आखिरी श्लोक में लिखा है वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम ये भागवत, पुराणों में भागवत है, वैष्णव में परम शंकर है भगवान शंभु है। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, जो रुद्र में रुद्र है उनमें मेरा नाम, मैं शंकर हूं। तो शंकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी विभूति है और रुद्रों में जो शंकर का स्वरूप है वो मैं हूं। तो शंकर एक आदि देव है और इस सृष्टि के अंत जो संचालन सृष्टि का करती है दुर्गा, उसका पति है, दुर्गा इस सृष्टि को चलाने के लिए आदि देवी है और शंकर जी उसका पति हैं। भवानी, उसका नाम भवानी है इसलिए शंकर जी का नाम भव है, भव भवानी। तो इस भौतिक जगत के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है और आध्यात्मिक जगत में शंकर जी का अपना लोक है। शंकर जी के पास अगर प्रार्थना करने जाओगे कि हमें भगवान की प्राप्ति कराओ तो निश्चित रूप से वो भगवान की सेवा में लगाएगा। जैसे प्रचेता 10 गए थे उनको शंकर ने मंत्र देके दीक्षा देके विष्णु की सेवा में लगाया था, लेकिन जाओगे उसके पास भांग पीने के लिए तो भूत बना देगा। शंकर बहुत बड़ा, शंकर जी का भागवत के अंदर 5-7-8 जगहों पे विस्तार से उनका वर्णन है और बहुत सम्मान करना चाहिए उनका, लेकिन भगवान नहीं है, बड़े वैष्णव है, आदि देव हैं, लेकिन अंतर है थोड़ा सा, दो ही काम करते हैं, या समाधि में रहते हैं या कथा करते रहते हैं। आप जो भी पुराण उठाओगे उसमें लिखा होगा भगवान शंकर पार्वती से बोले, या तो शंकर जी कथा करेंगे या समाधि में रहेंगे, तीसरा काम नहीं है, घर भी नहीं बनाया है, साधु की तरह जीवन बिताते।
बहुत बड़े त्यागी वैरागी हैं। एक नाम शंकर जी का है अनिकेत, उसका अर्थ है जिसका कोई घर नहीं हो। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं जिसका कोई घर नहीं है वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अनिकेत अनिकेत जो भी भक्त सब प्रिय है, तो भगवान शंकर ने घर इसलिए बनाया ही नहीं कि भगवान का प्रिय रहूंगा सदा। और यही शंकर जी पार्वती को कहते हैं आराधनाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम, सारी पूजाओं में से भगवान विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है, ये शंकर जी शिक्षा दे रहे हैं। और रामायण के अंदर तो सती राम जी को सीता के लिए रोते देखते हुए और भगवान शंकर ने प्रणाम किया राम जी को, तो सती कहती है इसको प्रणाम करते हो स्त्री के लिए रो रहा है। शंकर जी कुछ बोले नहीं, सती नीचे उतर के सीता का रूप धारण करके राम जी के सामने चली गई। राम जी ने प्रणाम करके कहा माँ शंकर जी कहाँ है। अब तो सती को शर्म आया, भगवान तो देख के पहचान गए कि ये सीता नहीं है। लेकिन जब शंकर जी को ये पता लगा तो शंकर जी ने कहा भगवान की परीक्षा लेने चली गई और उधर सीता का रूप धारण किया, अब तो आप का हमारे साथ रोना उचित नहीं है। और फिर दक्ष यज्ञ में सती ने शरीर त्याग दिया जाकर, कोई और भी कारण हुए वो सती फिर दोबारा गिरजा के रूप में, गिरजा गिरी कहते हैं हिमालय को, और उनकी पत्नी मैनिका इनके घर में उत्पन्न हुई। फिर दुर्गा ने फिर ये जो गिरिजा दुर्गा है इसने बहुत बड़ी तपस्या की, तपस्या भगवान शंकर को पति करके वरण करने के लिए एक स्थान है हरिद्वार के पास जहां सती ने तपस्या, जहां दुर्गा ने तपस्या की थी। फिर भगवान विष्णु ने कन्यादान किया था पार्वती का, कन्यादान करके शंकर जी का विवाह कराया था। तो स्थान है जहां ये विवाह हुआ था, केदारनाथ जाते हुए रास्ते में त्रियुगी नारायण नाम का एक स्थान आता है ऊपर, वहां यज्ञ कुंड है जहां सीता जहां पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था और भगवान विष्णु आगे कन्यादान किया था। लेकिन ये भगवान के आपस में प्रेम का जो रास्ता है हम उस स्तर के ऊपर सोच नहीं सकते। हम सबको सम्मान देना चाहिए लेकिन शास्त्र से समझना चाहिए कौन क्या है। हरे कृष्ण। और किसी की कोई जिज्ञासा है?
अगर मन में कोई शंका है तो निसंदेह
बोलिए।
वो जब मैं घर कीर्तन कर रही थी तो मेरी वो जो नारियल फोड़ते हैं लोग, तो वो नारियल नहीं,
वो भूत पिशाच को भगाने के लिए जा फोड़ते हैं, ये नारियल फोड़ रहे हैं कि भूत सब इस नारियल के साथ भाग जाएं, लेकिन भूत उसको उठा के खा लेते हैं। है भूतों के लिए होता है, जो खाते हैं वो भूत है। अरे क्या नारियल देख के सब खाते हैं, ये पता नहीं है कि भूतों के लिए, वो खाने के लिए, खाने के लिए नहीं होता है वो तो भूत को बलि देते हैं, जैसे बलि दे के जा रहे हैं कि कोई हमारी दुर्घटना ना हो, लेकिन उसको हम हमारे खाने के लिए नहीं होता। लेकिन हमें मालूम नहीं, हमें तो नारियल दिखता है, कोको है तो बस खाओ। तो वैसे भी भूत ही है, हमारे को क्या फर्क पड़ता है। साधु लोग नहीं खाते।